ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का किया उद्घाटन। चिनाब पुल में भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील का भी हुआ इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दी। बीजापुर जिले में 25 लाख रुपए का इनामी एक माओवादी नेता मारा गया। दंतेवाड़ा जिले में आज 7 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। इसके अलावा उन्होंने 46,000 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। चिनाब पुल के निर्माण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 16,000 मीट्रिक टन स्टील की आपूर्ति की गई, जिसमें दुर्ग के भिलाई इस्पात संयंत्र निर्मित स्टील शामिल है। भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक जनसंपर्क अमूल प्रियदर्शी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि चिनाब नदी में बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल में भिलाई इस्पात संयंत्र का 12,400 मीट्रिक टन से अधिक स्टील लगा है। इसमें स्ट्रक्चर प्लेट और टीएमटी बार जैसे उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रत्येक कार्मिक के लिए ये गर्व और खुशी का क्षण है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ये परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने 3 जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसे परीक्षा केंद्रों की संख्या 2 गुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नई वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, वक्फ विवरण दाखिल करना, औकाफ के रजिस्टर का रखरखाव और वक्फ के मुतवल्ली द्वारा खातों का रखरखाव प्रस्तुत करने सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा।
आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे।
बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी नेता मारा गया है। इसकी शिनाख्त तेलंगाना स्टेट कमेटी के 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी भास्कर के रूप में की गई है। घटनास्थल से माओवादी के शव के साथ ही एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। गौरतलब है कि कल हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी माओवादी सुधाकर इसी जगह मारा गया था। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में आज 7 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 2 माओवादियों पर कुल 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने दंतेवाड़ा के उप निरीक्षक कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव राय समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को बिना गुंडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इसने ग्राम झारावार के आगे पहाड़ी के पास पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में शामिल होना कबूल किया। आरोपी ने अपना नाम राजू नुरेटी बताया और इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आज कहा कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे करने के अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का विकास युवाओं के दृढ़ विश्वास और असाधारण ऊर्जा शक्ति से प्रेरित है। देश में पिछले दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश के सभ्यागत गौरव को स्थापित करने वाले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं।
भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले एक दशक में चहुंमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवन परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थयात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विवाह के माध्यम से इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार रायपुर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल रात कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की सफलता को लेकर श्री थरूर ने मीडिया को बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और इसकी अनिवार्यता के संदेश का प्रसार विभिन्न देशों में किया। इस बीच भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी पहुंचा है। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख का संदेश ले जाने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों में से 5 प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की सफल यात्रा करने के बाद भारत लौट चुके हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव शुरू हो गया है। ये महोत्सव उद्यानिकी विभाग और प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। आम की 200 से अधिक किस्मों और आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाकर कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों से सीधा संवाद कर रही है। रायपुर स्थित राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों को ये जानकारी दे रही है कि सीमित संसाधनों में आमदनी किस तरह से बढ़ाई जाए।
किसानों को ये बताया गया कि आप जो है वो कैसे मैकेनाइज वे में जा सकते हैं, जैसे आजकल मजदूरों की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, तो कैसे आप छोटे छोटे उपकरण से जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके साथ साथ खेती की लागत को कम करते हुए आपका आमदनी दुगना हो सकता है। तो ये सब बातें हम लोग जो है विकसित कृषि संकल्प योजना के तहत किसानों को बता रहे हैं।
श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान पर केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 7 जून को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। वहीं प्राइमरी चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राज्यपाल रमन डिका ने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 10 टीबी मरीजों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए 60,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। ये राशि उन्होंने अपने स्वेच्छानुदान मद से दी है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल ईद उल अजहा का पर्व छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डिका ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कोंडागांव जिले में नायब तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और महासमुंद पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 36 लाख रूपये बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का किया उद्घाटन। चिनाब पुल में भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील का भी हुआ इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दी। बीजापुर जिले में 25 लाख रुपए का इनामी एक माओवादी नेता मारा गया। दंतेवाड़ा जिले में आज 7 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।